आज का प्रातः क्लास है शनिवार 1964 नौवा महीना उन्नीस तारीख रिकॉर्ड चला है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। कहना पड़ता है और उस हिसाब से अच्छा कहना ओम शांति, ये भी बच्चों को बताना है क्योंकि आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी बताते हैं कि हम भी शांत हैं और शांत देश के रहने वाले हैं और तुम भी शांत हो। तुम्हारा ओरिजिनल अर्थात असल स्वरूप तुम आत्मा हो और तुम्हारा स्वधर्म है शांत। परंतु ये बात भूल गए हो। देखो सारी दुनिया शांति शांति चाहती है, अभी शांति किसको कहा जाता है? बेचारे कोई भी नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि ये जो इतना सारा हंगामा है धूमधड़ाका, आपस में लड़ना झगड़ना, वो सब शांत हो जाए। उनकी लड़ने झगड़ने से शांति होती है। परंतु वो तो कोई काम की नहीं है। घर में कोई बच्चे बच्चियां या स्त्री पुरुष आपस में लड़ते झगड़ते हैं, अशांत होते हैं। अच्छा अगर नहीं लड़ते झगड़ते हैं तो कोई शांति हुई क्या? ना, शांति तो है ही एक, और वो एक और चीज है जो है ही आत्मा का स्वधर्म शांत। और वैसे ही बाप का भी स्वधर्म कोई से भी पूछो आत्मा का बाप कौन है, कह देंगे फलाना है। फिर पूछो उनका धर्म क्या है तो कहेंगे उनका धर्म है ही शांत, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो शांति देश में रहने वाले हैं। हम भी शांति देश में रहने वाले हैं, परंतु किसने इस स्वधर्म आत्मा को बुलाया? तो अभी भी कोई भी आवे तो उनको बोलो बच्चे तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना, तो मसूल वहां शांति देश में रहने वाले हो और यहाँ आए हो पार्ट बजाने के लिए। शरीर द्वारा अपने कर्म का पार्ट, इसलिए उनको पार्ट तो बजा नहीं है। अब पार्ट बजाना है तो शांत तो नहीं रह सकते ना। इन कर्मेंद्रियों द्वारा बोलना है, चलना है, उठना है, बैठना है और शांति के लिए कोई जंगल में जाने की भी दरकार नहीं है। बाबा ने तो बहुत अच्छा समझाया है कि आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है और अच्छी तरह से पता है, और जब आत्मा थक जाती है, रात को अशरीरी हो जाती, यानी ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। तो देखो रात को कितनी शांति होती है। रात को कोई बाहर निकले कितना सन्नाटा रहता है। भले बॉम्बे भी हो या कोई भी कितना बड़ा शहर हो, सुबह होते ही कितनी झिलमिल होने लगती है। 3-4 बजे से ही आवाज होने लगती है और कोई 1-2 बजे देखे तो सब दुकानें बंद, सब सोए पड़े हैं, शांत। तुम बच्चों को समझाया गया है कि क्या होता है, आत्मा अपना अपना पार्ट बजाते बजाते थक जाती है, फिर रात को सो जाती है। अब वो तो ही रात और दिन की बात, अभी तो रात और दिन हम बेहद क्या कहते हैं। आत्मा 84 जन्म का पाठ बजाए बजाए अभी थक गई है। अभी थक जाने के कारण, पार्ट पूरा हो जाने के कारण वापस जाना है। और कहाँ जाना है, शांति धाम। तुम बच्चों को भी कहा जाता है शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। तो बाप ऐसी राय देते हैं, याद कहाँ करेंगे। सुखधाम और शांति धाम में बैठ करके याद किया जाता है। किया जाता है क्या है, सुखधाम में बैठ करके आत्मा को याद नहीं करते। आत्मिक स्थिति नहीं होती है क्या। आत्मिक स्थिति होती है, लेकिन स्पेशली बैठ करके याद नहीं करते हैं। शांति धाम में भी याद नहीं किया जाता है, याद किया जाता है दुख धाम में, अशांति धाम में। तो जरूर कहेंगे ना कि अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, क्योंकि यहां अशांत हुए पड़े हैं। ऐसे थोड़े ही है कि शांति धाम में कोई कहने वाला होगा या सुख धाम में कोई कहने वाला होगा। इस समय में कहने वाला होता है कि बच्चे अभी तुम्हारा नाटक पूरा हुआ है और अभी तुमको अपने घर चलना है, पीछे तो तुम्हारे लिए शांति भी है और सुख भी है, परंतु अशांति और दुख कौन फैलाता है? ये रावण है। तो बाप कहते हैं गिरना है, संभलना है, इसी समय की बात है। १९६४ की वाणी का दूसरा पेज, इस समय की बातें बाप बताते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे इतना माया तुमको गिराएगी नहीं, और अगर कोई न कोई संग दोष में आए तो आप ही बाप की याद भूल जाती। तो जरूर है कि माया कोई न कोई भूत के रूप में तुमको गिराएगी जरूर, तो ये है संभलने की और फट से खड़े हो जाने की बात। तो कैसे हम खड़े रहें और कैसे संभले, कदम कदम पर जो चीफ पंडा बाबा है वो मुख्य पंडा है ना, उससे हम श्रीमत लेते रहें। इसलिए तुम्हारा नाम ही पांडव रखा गया है, तुम भी पंडे हो, तुम्हारी पंडों की सेना है। फिर नाम रख दिया है पांडव, पर हो तो पंडे ना, वो होते हैं जिस्मानी पंडे। यात्राओं पर ले जाते हैं और तुम हो रूहानी पंडे, उनकी ये जिस्मानी यात्राएं। तो मनुष्यों ने इन बातों पर बैठकर शास्त्र तो बहुत बनाए है, वो तो पांडव कौरव यादव ये लड़ाई के रूप में ले गए, तुम वास्तव में हो ही पंडे, बाप भी पंडा। बाप कहते हैं मैं पंडा हूं, आया हूं तुमको बाप सच्ची यात्रा पर ले जाने के लिए। कहां ले जाने के लिए? तुम्हारे शांति धाम में ले जाने के लिए, और ऐसे शांति धाम का पंडा तो एक ही बनता है। इस दुनिया में तो वहां देखो उनके बच्चे भी पंडे बनेंगे, परंतु यहां तो पंडा एक है, फिर एक से तो काम नहीं होगा ना। तो देखो कितनी सेना हो जाती है। तो तुम पंडे, तुम बच्चों का रुख अभी कहां है? अब अपनी शांति धाम की तरफ। कितना दूर है? परे ते परे। चांद सितारों की दुनिया के भी परे। बद्रीनाथ जाना, अमरनाथ जाना, फलानी जगह पर जाना, वो कोई परे ते परे थोड़े ही है, ये तो यहां बाजू में बैठे हुए हैं। कौन है? अरे अमरनाथ, बद्रीनाथ वगैरह वगैरह, वो तो सहज है। अच्छा, भला वो सहज है या ये सहज है? दूर जाना अपने सूक्ष्म वतन, फिर ठक से मूल वतन, तो अभी वो नजदीक है या ये अमरनाथ और बद्रीनाथ नजदीक है? बताओ, देखने में तो आता है कि ये तो परे ते परे है और वो तो यहां सामने नजदीक में है। रेल में जाओ या किस में जाओ, परंतु नहीं, ये ऐसे टाइम लग जाता है। यहां सूक्ष्म वतन में जाना, मूल वतन में जाना, वैकुंठ वतन में जाना, ये तो तुम्हारे लिए सेकंड की बात है, तो बहुत दूर। तो परे ते परे इसको कह देते हैं और है बिल्कुल नजदीक, और वो तो और ही परे है। तो बाबा समझाते हैं कि बहुत नजदीक भी है, तुम कितना तेजी से पहुंच जाते हो, तुमको वहां पहुंचने में टाइम थोड़ा ही लगता है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो, अभी तुमको वही यात्रा याद आती है, तो ये यात्रा तुम्हारे लिए कोई नई नहीं है। वो भी जो यात्राएं करते हैं उनके लिए भी कोई नई नहीं है। कल्प कल्पांतर तुम ये यात्राएं आधा कल्प करते आए हो, और फिर ये एक यात्रा तुम्हारी बाप आकर के बताते हैं, बताते भी हैं और कराते भी हैं, और कोई भी इस दुनिया में वो यात्रा नहीं करा सकते। बाप या बाप के सिकिल्ले बच्चे ही ये यात्रा करा सकते हैं। उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, क्योंकि तुम बच्चों को तो हर एक को जहां तहां रास्ता दिखलाना है। हर एक मन है, तुम सिकील दे बच्चे ही ये रास्ता दिखला सकते हो। कौन सिकील दे बच्चों की तरफ इशारा किया है?
पूरे
अरे हर एक को रास्ता बताने वाले तुम हो, लेकिन तुम सिकिल दे हो। जिनको रास्ता बताएंगे वो सिख सिख से मिले हुए बहुत लंबे साल से बिछड़े हुए नहीं है, तुम सिकिल दे हो। तो तुमको जहां तहां रास्ता दिखाना है, जहां तहां है। क्या मतलब जहां तहां है? तुम हर एक यात्रा का रास्ता दिखलाने वाले, हर एक धर्म वालों को यात्रा दिखाते हो, कराते हो, पंडे हो, बाप भी कहते हैं कि तुम मंदिरों में जाकर के समझाओ, बोलो ये चित्र तो देखो, अब ये यहां कब राजी करते थे, उनको समझाना पड़े। तुम जब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो, उसको तो बहुत नजदीक रख दिया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को शहर में क्यों रख देते हैं इतना नजदीक है? और अमरनाथ को तो कितनी दूर रख दिया है, क्यों है? कौन है अमरनाथ और कौन है नजदीक जिसे लक्ष्मी नारायण बताया? क्योंकि अमरनाथ दूर रहने वाले हैं ना, वो लक्ष्मी नारायण शहर में रहने वाले, तुम्हारे साथ राज्य में राज्य करने वाले, और वो अमरनाथ तो परम धाम से शांति धाम से आने वाले। तो इनको बहुत दूर जाकर के रखा है, ये यादगार है, नजदीक भी रखा है और दूर भी रखा है। और दर दर पर उनका चित्र बनाई दिया है, क्योंकि ढेर चित्र बनाए हैं ना, मंदिर कितने बनाए हैं इसके है? नहीं, लक्ष्मी नारायण से भी ज्यादा मंदिर शिवलिंग के हैं। एक का मंदिर देखो कितने बनते हैं, तो किसका मंदिर बनाते हैं? बाप ने समझाया कि मंदिर बना है जो पतित पावन है। किसका मंदिर बना है यादगार है? ये यादगार मंदिर किसका बना है? किस मंदिर की बात हो रही है? अरे अमरनाथ के मंदिर की बात हो रही है ना, जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, वो शिवलिंग के मंदिर कितने बने हुए हैं? और वो है सबसे नंबर वन पतित पावन। उस मंदिर में क्या यादगार रखी हुई है? हैं? पतितों को पावन बनाने की यादगार रखी हुई है। पतितों को पावन बनाने की यादगार रखी हुई है। शिवलिंग ही तो है। उसे पतित कहे कि पावन कहे? है? हाँ, साकार में निराकार आता है, उसको निराकार ही बनाता है, तभी तो पतित पावन है। तो जो शिवलिंग मंदिर में रखा हुआ है, जिसकी पूजा होती है, पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पवित्र की पूजा होती है, तो उसको तो पावन ही कहेंगे, लेकिन वो तो पतित पावन है, तो वो पावन किसको पावन बनाए रहा है? हैं? पतित को पावन बनाए रहा है। कौन है पतित उस मंदिर में? शिवलिंग तो खड़ा है, पतित है, पड़ा है या खड़ा है? खड़ा है, फिर पतित कौन है? है? शंकर पतित है। हाँ, महाकाली पांव रखती है छाती के ऊपर, तब तो कहेंगे पतित है। लेकिन यहां तो शिवलिंग की बात हो रही है, शिव के मंदिरों की बात हो रही है, जहां जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है, वो जलाधारी किसकी यादगार है? हैं? किसकी यादगार है? हैं? अरे जगदम्बा की यादगार है। हैं? अरे पार्वती की यादगार है ना, जो पार्वती है, नाम रखा है जलाधारी, यादारी माने ज्ञान जल को धारण करने वाली, तो ज्ञान जल को कब धारण करती है? है? जो बेसिक ज्ञान है, जो ब्रह्मा के मुख से निकला, वो धारण करती है, तब जलाधारी है। जिस ज्ञान के लिए मुरली में बोला, अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या? जो बेसिक ज्ञान सुनाया ब्रह्मा के मुख से, उसको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन ज्ञान का अमृत नहीं कहेंगे। अमृत पी के क्या होता है? अमर बनते हैं। अमर माने क्या? निश्चय बुद्धि बनते हैं। बार बार अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते। मना वेद के जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, वेद के जन्म मरण के चक्र से छूटने का उपाय पार्वती धारण करती है और बोला तुम सब पार्वतियां हो। मना तुम सब नंबरवार उस ज्ञान जल को धारण करने वाली हो। कौन सा ज्ञान जल है? अरे जो सिर्फ नाम मात्र ज्ञान है लेकिन ज्ञान अमृत नहीं है वो ज्ञान जल है, या ज्ञान अमृत है वो ज्ञान जल है? और वो अमृत है इसके द्वारा निकलता है, हैं? अरे मीडिया कौन बनता है? इसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, खड़ा हुआ है या पड़ा हुआ? तीसरा नेत्र खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो फिर पुरुषार्थ की संपन्नता होने पर नारायण बनता है। लेकिन नारायण पुरुषार्थी जीवन में या पुरुषार्थी जीवन के बाद है? पुरुषार्थी जीवन के बाद नारायण बनता है, और नारायण की लक्ष्मी ज्ञान किससे लेती है? नारायण से ज्ञान लेती है। जिस नारायण से ज्ञान लेती है वो ज्ञान अमृत होगा या सिर्फ ज्ञान होगा? ज्ञान अमृत होगा। उस ज्ञान को धारण करने वाली वो जलाधारी का नाम क्या रखा? पार्वती। पार लगाने वाली है, डुबोने वाली? डुबोने वाली नहीं है। पार लगाने वाली कैसे है? और पहले पहले किसको पार लगाने वाली है? अरे अंधे लंगड़े की कहानी भी दिखाते हैं। विषय वैतरणी नदी को पार किया, किसने पार किया है? अंधे और लंगड़े ने। तो अंधा आधार बनता है या सवार बनता है? सवार बनता है। अंधा आधार बनता है। जो आधार है वो ही तो धारण करता है ज्ञान को, है? ज्ञान को धारण कौन करता है? जो आधार है, धरणी जिसे कहा जाता है, धारणावान। शास्त्रों में नाम दे दिया राधा, एक ही होती है, बाकी सब राधाएं नहीं हो सकती। सीताएं अनेक हो सकती है, द्रौपदियां अनेक हो सकती है, लेकिन राधा अवलंबर एक ही होती है, इसलिए नाम पड़ा है। राम को धारण करने वाली, राम को धारण करने वाली या राम के द्वारा जो अमृत निकला उसको धारण करने वाली है? अमृत को धारण उसने किया नंबर वन। तो नंबर वन ज्ञान अमृत को धारण करने से ये कहा गया कि ज्ञान से ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। और वो धारणावान पार्वती आधार के रूप में दिखाई गई है। किसका आधार बनती है? नारायण तो बाद में बनता है, पहले लिंग है या नारायण है? पहले तो लिंग है, निराकार है, और निराकारी स्टेज वाला है तो पतित पावन है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी है तो वो पतित पावन है। पतितों को पावन बनाने वाला साबित हो जाता। कौन? वेद का बाप। वेद का बाप एक या दो है? दो। एक बिंदु के रूप में है, एक लिंग के रूप में है। बिंदु निराकार और लिंग साकार। निराकार और साकार के मेल को क्या कहते हैं? भक्त लोग भी क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं या नहीं कहते? शिव बाबा। मंदिर में जाएंगे, निराकार की यादगार देखेंगे, कोई हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, शरीर नहीं है, फिर भी क्या कहेंगे? शिव बाबा। बोले भंडारी। तो देखो क्या निराकार शिव बाबा शिवलिंग ही है और कोई नहीं है? शालिग्राम की पूजा नहीं करते क्या? है वो निराकार नहीं? अरे शालिग्राम भी तो निराकार है, लेकिन वो नंबर वार है या नंबर वन है? शालिग्राम है नंबर वार और शिवलिंग है नंबर वन। क्यों? वो नंबर वार क्यों और वो नंबर वन क्यों है? अच्छा, रुद्रमाला के मण के जो शालिग्राम जैसे देखने में आते हैं गोल मटोल, उनमें शिव नहीं प्रवेश करता? करता तो है। हाँ, कहेंगे मुकर्रर रूप से नहीं प्रवेश करता। कोई प्रूफ नहीं है जो कोई कह सके कि प्रवेश करता ही है। क्योंकि रुद्राक्ष के मणकों में जो निराकारी स्टेज वालों की यादगारें हैं उनमें अनेक मुख होते हैं। एक मुख वाला मणका कहीं विरला मिलता है, और जो मिलते भी हैं वो नकली बनाए हुए हैं। असली मणका बहुत विरला मिलता है। तो बताया वो पतित पावन है सबसे नंबर वन। सबसे माने किससे किससे है? सबसे माने किससे टैली किया है? अष्टदेव ही निराकारी बनते हैं सिर्फ शालिग्राम। 108 मण के हैं रुद्राक्ष के, रुद्रमाला के, वो निराकारी स्टेज नहीं धारण करते हैं? हाँ, तो नंबर वार। लेकिन नंबर वन एक शिवलिंग है। क्यों? कारण क्या है? सबसे पहले किस आधार पर कहें? क्योंकि राजधानी जब स्थापन होगी और उसमें कहें सबसे पहला, तो राजधानी एक के द्वारा स्थापन होगी या परिवार होगा? कम से कम 8 तो होंगे। तो राजधानी में 8 होंगे तो नंबर वार, लेकिन राजधानी एक साथ होगी या धीरे धीरे करके होगी? है, राजधानी धक्के से स्थापन करेंगे या एक एक नंबर गिन करके रखेंगे तब स्थापन होगी? धक्के से स्थापन होगी। तो बताया सबसे नंबर वन है शिवलिंग, पतितों को पावन बनाने में। कारण फिर भी अभी निश्चित नहीं हुआ। कारण है कि और जो है देवताएं अष्टदेव, उनकी अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं और शिव की काम इंद्रिय पूजी जाती है। अन्य इंद्रियों को कंट्रोल करना सहज है, परंतु काम इंद्रियों को कंट्रोल करना, कामदेव को भस्म करना, ये सिर्फ है एक के बस की बात है। जो 100% काम विकार को कंट्रोल कर लेता है, कामदेव को भस्म ही कर देता है। अगर थोड़ा रह जाए तो पतित पावन कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। इसलिए बोला सबसे नंबर वन पतित पावन, बाकी का मंदिर बनाने से क्या फायदा? हैं? बाकी माने किसकी किसकी तरफ इशारा कर दिया है? अरे जो भी देवताएं हैं उन सब देवताओं की तरफ इशारा किया कि वो पतित इंद्रिय को पावन तो नहीं बना सकते। पतित इंद्रिय के संग के रंग में ला करके पावन बनाना सिर्फ एक का ही काम है। 1964 की वाणी का तीसरा पेज। तो जिनका मंदिर यादगार बनाने से कोई फायदा नहीं, वो तो कोई सुख नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? किसकी तरफ इशारा किया है? अरे कौन सुख नहीं देते और कौन सुख देते हैं? अरे वो देवताएं जो कामेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो तो कोई कोई सुख नहीं देते हैं। तो फिर सुख देता कौन है? हैं? एक ही शिव बाबा है। अच्छा, तुम पुजारी बन जाते हो तो पुजारी क्या सुख के लिए बनते हो? हैं? पूजा करते करते बिल्कुल ही धक्के खाते खाते थक करके तो अभी बाप आता है तुमको पुजारी से पूज्य बनाने के लिए, जबकि गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी है। तो शिवलिंग के मंदिर में किसको कहेंगे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी है? जो पूजा करने आते हैं पुजारी उनके लिए कहें आपे ही पूज्य, फिर कौन? जो शिवलिंग है वो ही फिर द्वापर युग से क्या बन जाता है? पुजारी बन जाता है। और सतयुग त्रेता में पूज्य होता है। जो गायन होता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप तो पुजारी नहीं बन सकेंगे, फिर पुजारी को पूज्य कौन बनावे? तो बच्चे ही जानते कि पहले हम पूज्य थे, अब पुजारी बन पड़े हैं। तो पुजारी का दर्जा तो बिल्कुल ही कम हो गया ना। पूज्य का दर्जा बड़ा भारी पुजारी का? पूज्य का बड़ा भारी या पुजारी का? पूज्य का बड़ा भारी दर्जा। तो बच्चे ही जानते हैं कि पहले हम पूज्य थे अब पुजारी बन पड़े। तो अब हम पुजारी हैं तो पूज्य का ऊंचा दर्जा है ना। हाँ? अरे किस आधार पर कहा है? अरे मंदिर की बात हो रही है ना, शिवलिंग की बात हो रही है, जलाधारी की बात हो रही है। ऊंचा कौन? शिवलिंग ऊंचा। अभी जो पति तो बने हैं तो वो ही दर्जा कौन दिलावे? बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे तुम पूज्य थे, देवी देवता थे, फिर तुम पुजारी बन करके गिरते गिरते धक्का खाते आए हो। भले वहां तुम कितना भी कुछ संभालो, फिर भी वहां तो पुजारी बन नहीं है। यहां पुजारी पने को छोड़, पूजा को छोड़ करके पूज्य बनना है। पूज्य बनने में माया का विघ्न है। और यहां दूसरा कोई विघ्न थोड़ा ही पड़ता है क्या? है सबसे जास्ती विघ्न कौन सा पड़ता है? है क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का या काम का? माया के विघ्न अभी पड़ता है। जबकि तुम अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, देखो तुम उस यात्रा की तैयारी करते हो तो कितने विघ्न पड़ते हैं। और यात्राएं देखो, सत्संग देखो, मंदिर देखो, कहां भी तुमको कोई रोक नहीं सकता है। और यहां है, यहां तुमको रोका जाता है। यहां तो देखो पुजारी से पूज्य बनने में माया तुमको कितना हैरान करती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, कोई न कोई बात में गिर जाते हैं। सबसे जास्ती गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहे बच्चे अभी मूत पलीती बनपनो, क्या कहा, क्या ना बनो, ये क्या होता है, हैं? मूत पलीती मत हो, कोई बाथरूम है क्या? बाप का कहना क्या है, मूत पलीती मत बनो माने पति तो माने भिखारी माने पति तो माने गिरना, क्या पहाड़ पर चढ़े हुए हैं सो गिरोगे है? पति तो माने जो शक्ति मस्तक में जानी चाहिए, बुद्धि बाप समान बुद्धिमानों की बुद्धि बननी चाहिए, ऊंची स्टेज वाली मन बुद्धि आत्मा बनी है, हैं? और वो शक्ति नीचे गिर जाए, सिर्फ पुरुष की या स्त्री की भी है? स्त्री की, पुरुष की नहीं, पुरुष भी नीचे गिरते हैं और स्त्रियां भी नीचे गिरती हैं। बहुत करके पुरुष पहले नीचे गिरते हैं। तो बोला बाप कहे बच्चे अभी मूत पलीती नहीं बनना, मना काम इंद्रिय से जो राजा और वीर निकलता है वो ही मूत का हिंसा है, वो गिर गया और मूती पलीती हो गए माने कपड़े गंदे जरूर होंगे, स्थूल कपड़ा भी तो चैतन्य कपड़ा भी। अरे हम तो तुमको साफ करने आए हैं, क्या तुम्हारे कपड़े सतयुग में कैसे होंगे, वहां मूत पलीती बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, तुम्हारा हद और बेहद का कपड़ा सदैव साफ रहेगा। फिर देखो घड़ी घड़ी संभलना है, क्या माया क्या करती है, है? कोई न कोई घुमा फिरा के ऐसे विचार लाएगी कि तुमको गिरा ही देती है। और देखते हो कितने गिरते हैं, हिसाब तो करो। उसमें भी सबसे गंदा है काम की शिक्षा पर जाना चलना। क्या काम शिक्षा में जलना माना मन बुद्धि में काम विकार का मंथन करना, उसको कहते हैं काम शिक्षा में जलना। या फिर विषय सागर में गोता खाना, गोता करते हैं तो क्या होता है, हैं? डूबते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर डूबते हैं, फिर ऊपर आते हैं। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, उसमें मत गिरना। गटर की तरफ जाने का कभी भी ख्याल नहीं करना। बाप तो बहुत ही समझाएंगे ना, क्या कहा, बेसिक में जो ज्ञान देते थे शुरुआत में वो बहुत समझाते थे, गहराई से समझाते थे, तो थोड़ा बहुत समझाते थे, वो भी किसी को समझ में आया आया नहीं आया। तो बाप तो बहुत समझाएंगे ना, भविष्य की बात बताई या वर्तमान की या पास्ट की, समझाएंगे मना कब समझाएंगे, है भविष्य में समझाएंगे मना, 64 की बात नहीं है। जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष का पाठ खुलता है उसके बाद की बात है।